We welcome and greet each and every one of you seated before your television waiting for this program.
इस प्रोग्राम की राह देखते हुए आप सभी दर्शक जो टेलीविजन के सामने हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं. यीशु मसीह के नाम में आपको अभिवादन करते हैं.
Just as you are excited, we are also excited to deliver this program so that you'll have a greater understanding of the Bible.
और जैसे कि आप उत्साहित हैं, निश्चय हम भी उत्साहित हैं कि इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको बता सकें और आप भी बाइबल में से परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझ सकें.
We thank God on behalf of Subhavata. We have this opportunity that you can enjoy this holy land and learn more facts about your Bible.
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि शुभ संदेश टेलीविजन के माध्यम से हमें ये मौका मिला है कि हम आपको परमेश्वर के वचन से सिखा सकें और परमेश्वर के वचन से आप अधिक जान सकें.
Last week you noticed that we told more about the first coming of Jesus Christ with the prophecy of Balaam, Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, and of course Micah.
और निश्चय आपको याद होगा कि हमने पिछले हफ्ते में आपको यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में भविष्यवाणी बताई, जो कि सबसे पहले बलाम ने, उसके बाद में राजा दाऊद और यिर्मयाह, यशेहा और मीका भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में भविष्यवाणी की थी.
Without forgetting the great King David.
और राजा दाऊद जो कि महान राजा था, उसके बारे में हम भूल नहीं सकते हैं.
These prophets were able to accurately predict the place of birth and the timing ministry with the sufferings.
और ये जो भविष्यवक्ता थे यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उसके जन्म के स्थान के बारे में और उसकी सेवकाई और उसके दुखों के उठाने के बारे में और उसकी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी करते रहे.
When we talk about sufferings, of course you will remember the crucifixion and his resurrection.
और जब हम दुख उठाने के बारे में कहते हैं तो अवश्य ही आपको याद होगा क्रूसीकरण और साथ साथ में उसका पुनरुत्थान.
But if our mind goes back to the first coming, we will remember that Jesus Christ humbled himself to be born in a stable.
अगर हम पहले आगमन के बारे में सोचते हैं तो निश्चय हमारा मन इस तरह से याद करता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र किया कि वो एक चरनी में जन्म ले.
Yes, and you all know, of course, it is in Bethlehem. And living a life on this earth with great humility.
और आपको ये बात याद होगी कि निश्चय ये तो बैतलहम में है और इस पृथ्वी पर वो बहुत ही नम्रता से अपना पूरा जीवन व्यतीत किया.
So we go back to Dr. Luke, how he would have gathered all this information, and though he wrote the gospel maybe 20 to 30 years after the resurrection, he would have verified with the people who were present and witnessed the ascension, what the angels declared before the crowd.
और हम इस तरह से बाइबल में देखते हैं कि डॉक्टर लूका, जिसने उठाए जाने के लगभग 25 से 30 साल के बाद में ये सुसमाचार लिखा, उसने उस समय स्वर्गदूतों के बारे में जो उसने लोगों से कहा, उसके बारे में सारी बातों के बारे में जब लिखने के पहले उसने लोगों से चर्चा की होगी, उन लोगों से उसने व्यक्तिगत रूप में बातें की होगी, सारी बातों को उसने खुद जांचा था.
It's amazing to note how many people are reading and anticipating the second coming of Jesus Christ.
ये जानना तो बहुत ही अद्भुत है कि बहुत से लोग जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी सराहना करते हैं, उसके लिए राह देख रहे हैं.
And we read in so many books, it will come at a time when there's such a great need for the righteous king to come and rule in the land.
और हम बहुत सी किताबों में इस तरह से पढ़ते हैं कि निश्चय ऐसा समय आएगा जब वहाँ पर धर्मी राजा हमारे देश में राज्य करे, इस तरह से बहुत बड़ी जरूरत होगी और निश्चय वो दूसरा आगमन होगा.
But at the same time, there will be a confusion and a devastation in the world.
लेकिन साथ साथ में उसी समय में इस पूरे संसार में गड़बड़ी होगी, इस पूरे संसार में विनाश होगा, इस तरह से बताया गया है.
Billions of people will perish.
और लाखों और करोड़ों जो लोग हैं वो तो नाश हो जाएंगे.
And the most evil person all of history will be the ruler of the entire world.
और पूरे इतिहास में जो सबसे दुष्ट मनुष्य है वो तो इस पूरे संसार के ऊपर में राज्य करने वाला हो जाएगा.
If your eyes are searching and looking out for the present political situation,
अगर आपकी आंखें वर्तमान की राजनीतिक परिस्थिति के ऊपर बनी हैं, आप उसे देखते जा रहे हैं,
the whole world is heading towards the situation as predicted by the Bible.
तो पूरा जो संसार है वो निश्चय ही उस परिस्थिति की ओर आगे बढ़ते जा रहा है जिसके बारे में बाइबल में अनुमान लगा के बताया गया है.
As I mentioned earlier, Jesus Christ himself explained to the disciples at Mount Olives.
और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जैतून पर्वत पर इन सारी बातों को अपने चेलों को बताया था.
You know what they talked about?
आप जानते हैं उन्होंने वहाँ पर क्या चर्चा की थी?
They talked about the second coming, of course.
उन्होंने अवश्य ही वहाँ पर दूसरे आगमन के बारे में कहा था.
Jesus told them plenty of parables in this regard.
और इस संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बहुत से दृष्टांत बताए.
Jesus Christ told about the Noah story.
और यीशु मसीह ने नूह की कहानी के बारे में भी बताया था.
When Noah was pleading with the people to repent, nobody listened to him.
जबकि नूह लोगों से विनती कर रहा था कि वो पश्चाताप करे और उस समय कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था.
They lived a lifestyle which was filled with worldly pleasures.
वो तो ऐसे जीवन शैली को जी रहे थे जिसमें केवल संसार का ऐशो आराम था, खुशियाँ थी.
I am sure you'll all feel that we are also heading in that direction.
और मैं जानती हूँ कि आप भी इस बात को जानते हैं कि हम सब लोग केवल उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं.
The Bible does not directly answer the question, but Bible scholars say it took 70 to 100 years to build the ark.
बाइबल इसके बारे में स्पष्ट तो नहीं बताती है, लेकिन बाइबल के विद्वान कहते हैं कि नूह को वो जहाज बनाने के लिए लगभग 70 से 100 साल लग गए ताकि वो इतना बड़ा जहाज वहाँ पर बना सके कि वो बच सके.
When Noah built the ark, the people gathered and mocked at him.
और जब नूह वो जहाज बना रहा था तो लोग जमा होकर उसका मजाक उड़ाया करते थे.
You know why?
आप जानते हैं क्यों?
Because this was a land with very little rain and it was almost a dry place.
क्योंकि वो तो ऐसी जमीन थी जहाँ पर बहुत ही कम बारिश हुआ करती थी और वो जो प्रांत था वो तो लगभग पूरी तरह से सूखा था.
And they mocked him as to how the ark will sail.
और वो इसका इस तरह से मजाक उड़ाया करते थे कि ये जो जहाज है ये किस तरह से पानी पर तैरेगा.
After the completion of the ark, it would have taken Noah more time to collect the animals.
और निश्चय ही जहाज बनाने के बाद में नूह को और भी बहुत समय लगा होगा कि वो उन सारे जानवरों को एक साथ जमा करे.
And you can imagine how difficult that would have been.
और आप कल्पना कर सकते हैं कि ये सच में कितना मुश्किल हुआ होगा.
And he had to collect the domestic as well as the wild animals.
और उसे पालतू जानवर और साथ साथ में जंगली जानवरों को भी वहाँ पर लेकर आना था.
And the problem was to get them inside the ark.
और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन जानवरों को वहाँ पर जहाज में लेकर आएं.
And also he had to collect all the food requirements to feed these animals.
और इन सभी जानवरों को भोजन देने के लिए जो कुछ भी खाने की जरूरी चीजें थी उसे वो भी जमा करनी थी.
I can just imagine all the difficulties he would have went through.
मैं कल्पना कर सकती हूँ कि वो इन सारी बातों में से कितनी मुश्किलों में से होकर गया होगा.
Seeing all this, the people definitely branded Noah as a madman.
और इन सारी बातों को देखते हुए निश्चय सभी लोगों ने कहा होगा कि नूह तो निश्चय एक पागल व्यक्ति है.
Then suddenly it started to rain.
और फिर अचानक बारिश होने लग जाती है.
At first, the people enjoyed the rain as they rarely see the rain.
और जबकि लोगों ने पहली बार बारिश को देखा था तो उन्होंने सच में उसका बहुत आनंद उठाया होगा शुरू में.
But when it continued to rain day and night without stopping,
और फिर जब दिन और रात बिना रुके वहाँ पर इतने देर तक वर्षा होती रही,
the people actually panicked.
तो फिर लोग जो है वो तो डर गए होंगे.
Finally, only Noah and his family, along with all the animals he collected, were saved.
और केवल आखिर में नूह और उसका परिवार और वो सारे जानवर जो उसने जमा किए थे केवल वही बचाए गए.
You may ask the question, what happened to the other people?
शायद आप ये सवाल पूछे कि दूसरे लोगों के साथ क्या हुआ?
All the others perished, both human and animal life.
बाकी सब लोग नाश हो गए, चाहे मनुष्य हो चाहे जानवर हो, सभी के सभी पूरी तरह से नाश हो गए.
Then Jesus Christ explained to his disciples in the similar fashion the second coming of Jesus Christ will happen.
और फिर यीशु मसीह अपने चेलों को इसी तरह से इस बात के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो भी इसी तरह से होगा.
Today also we see that people read about the second coming in the book of Matthew, Luke and the book of Revelation.
और आज भी हम देखते हैं कि लोग मत्ती, लूका और प्रकाशित वाक्य की किताब में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में पढ़ते हैं, वो इसके बारे में पढ़ते हैं.
They do not believe this, but also they are still wondering whether it would happen.
वो इस पर विश्वास तो नहीं करते हैं लेकिन फिर भी इस बात के बारे में सोचते हैं कि क्या ये सच में हो जाएगा।
इफ यू रीड द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 6 टू 12,
अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 6 से लेकर वचन 12 तक पढ़े तो आप ये बात पाएंगे,
जीसस प्रेडिक्ट्स एंड सेज दैट इट इज जस्ट द बिगिनिंग बट द एंड विल कम सून आफ्टर।
यीशु यहाँ पर कहता है कि ये तो केवल शुरुआत है लेकिन जो अंत है वो इसके बाद में बहुत ही जल्दी आने वाला है।
When we talk of wars in history,
जब हम इतिहास में युद्ध के बारे में बोलते चले जाते हैं, युद्ध के बारे में कहते हैं,
we read that one country will go into another and invade it.
और हम इस बात के बारे में पढ़ते हैं कि एक देश जो है वो दूसरे पर हमला करेगा और उसे छीन लेगा।
They will fight and they will return victoriously.
और वो तो आपस में लड़ेंगे और वो विजयी होते चले जाएंगे।
But today we read in the newspaper and see on the television. It's just by a press of a button that a missile can be launched and countries targeted.
और आज तो हम खबरों में देखते हैं और यहाँ तक कि अखबारों में पढ़ते हैं कि बस एक बटन दबाते ही मिसाइल लॉन्च हो जाता है और वो कई देश को नाश कर देता है, बहुत से लोगों को नाश करता है।
They can be destroyed in a second.
और ये सब कुछ बस एक सेकंड में नाश हो सकता है।
Now countries are competing with each other to get technology that will increase the reach of these destructive missiles.
और आज तो इन देशों में आपस में स्पर्धा हो चुकी है कि वो कैसे ऐसे मिसाइलों को बनाए जो बहुत दूर तक, बहुत दूर के देशों तक भी हमला कर सकती हैं।
Matthew 24:43.
मत्ती अध्याय 24 वचन 43 में हम इस बात को देखते हैं।
He wanted us to understand, so he is compared to the thief who comes not by invitation, but he comes as a surprise.
और वो चाहता है कि इस बात की तुलना इस तरह से करे, क्योंकि जो चोर है उसे कभी न्योता देकर नहीं बुलाया जाता है, लेकिन चोर जो है वो तो बिल्कुल अचानक ऐसे समय में आ जाता है।
Then Jesus Christ tells in Matthew chapter 24 verse 32.
और फिर यीशु मसीह मत्ती अध्याय 24 वचन 32 में इस तरह से हमें बताता है।
And he tells about another parable.
यहाँ पर वो एक और दृष्टांत के बारे में हमें बताता है।
And this time it is about a fig tree.
और इस समय ये तो अंजीर के पेड़ के बारे में है।
You must remember, Palestine is a dry country, it's a desert land, but there are many fig trees.
आपको इस बात को समझना होगा कि पैलेस्टाइन जो है ये तो एक सूखा देश है, लेकिन वहाँ पर बहुत से अंजीर के पेड़ हैं।
So seeing the branches tender and blossom putting forth leaves, people could tell summer was coming.
जब लोग देखते हैं कि अंजीर के नए पत्ते आ रहे हैं, हरे भरे पत्ते आ रहे हैं, तो वो बता सकते हैं कि गर्मियां अभी बहुत ही पास में हैं।
And they will predict the season.
और इस तरह से वो उस ऋतु का अनुमान लगाते थे।
All the signs that Jesus Christ said are all happening.
और यीशु मसीह ने जो भी चिन्ह बताए थे वो सारे के सारे चिन्ह अभी पूरे हो रहे हैं।
There are many things Jesus Christ spoke. Maybe they thought, what is he saying? They didn't experience, but now it is happening.
देखिए, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो यीशु मसीह ने कही थी और उस समय लोगों ने उन बातों का अनुभव तो नहीं किया था, लेकिन वो सारी बातें अभी हो रही हैं।
And that is wars and famines and pestilence.
और वो तो है युद्ध, अकाल और मरी, जिसके बारे में यीशु ने बताया था, सब अभी इस समय होते जा रहे हैं।
And earthquakes in many parts of the world.
और संसार के बहुत सी जगह पर हम भूकंप होते हुए देखते हैं।
So just as the fig tree blossom tells us about the approach of summer,
और इस तरह से जो अंजीर का पेड़ है जो फलवंत होता है वो इस तरह से बताता है कि गर्मी आ रही है।
All these signs are happening so that the end is near.
तो ये सारे जो चिन्ह है वो तो होते जा रहे हैं, ये बताते हुए कि अंत बहुत ही पास में है।
Or in the words of Jesus, it is right there at our doorstep.
और ये कह सकते हैं कि यीशु के शब्दों में कि ये सारे जो शब्द हैं वो तो हमारे बिल्कुल द्वार पर ही खड़े हैं।
In the first coming, prophecies were foretold thousands of years before you could see it fulfilled.
और पहले आगमन के समय हम देखते हैं कि ये सब कुछ होने के पहले, हजार साल पहले जो भविष्यवाणियां थी वो तो इस बात के बारे में हमें बता चुकी थी।
But the second coming of Jesus Christ will not be like that.
लेकिन यीशु का जो दूसरा आगमन है वो इस तरह से नहीं होगा।
It will come quickly and suddenly.
और ये तो अचानक होगा और ये बहुत ही जल्दी होगा।
Just as Matthew said in Matthew 24:27.
जैसे कि मत्ती अध्याय 24 वचन 27 में मत्ती हमें बताता है।
For as the lightning cometh out of the east,
और जैसे पूर्व से जो बिजली चमकती
and
है,
shineth even unto the west,
और पूरे पश्चिम तक वो चमकती
so
जाती है,
shall the coming of the Son of Man be.
वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा।
Before all these things, Jesus talks of a great tribulation and suffering.
और इन सारी बातों के होने के पहले यीशु कहता है कि महान क्लेश होगा और बहुत सा सताया जाना होगा।
If you read Matthew 24:21,
अगर आप मत्ती अध्याय 24 वचन 21 को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे।
It reads, "For then shall the great tribulation that was not since the beginning of the world."
क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा।
This time,
अब तक जो अभी तक नहीं हुआ
no,
है।
No, ever shall be.
और न वो उसके बाद में फिर कभी होगा।
Jesus gives in details about how sudden and deadly the days would be.
और यीशु यहाँ पर विवरण देता है कि कैसे ये सब कुछ जो है अचानक होने वाला इसका विवरण देता
He
है।
says that people won't have to do anything.
वो कहता है कि लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा।
And also Jesus warns people.
और साथ ही यीशु लोगों को चेतावनी देता
no
है।
No one can come down or go out. And Jesus pities the pregnant people.
कोई भी नीचे नहीं आ सकता और ना ही कोई बाहर आ सकता है और जो उस समय जो गर्भवती स्त्रियां हैं उसके ऊपर में यीशु दया करता है।
And those nursing with newborn babes.
और जो छोटे बच्चे जो कि अभी भी दूध पीने वाले हैं उन पर दया करता है।
I really cannot imagine or put into perspective the great sufferings of these days.
और इन दिनों में जो मुश्किलें होगी जो सताव होने वाला है जो बहुत क्लेश होने वाला है उसके बारे में मैं आपको शब्दों में बयान करके नहीं बता सकती।
We also see how quick his second coming is going to take place.
और हम ये भी देखते हैं कि कितने जल्दी उसका जो दूसरा आगमन है वो कितने जल्दी होने वाला है।
Then Jesus Christ in the book of Matthew chapter 24:29 tells.
और फिर यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 वचन 29 में इस तरह से कहता है।
Immediately after the tribulation of those days,
उन दिनों के उस क्लेश काल के तुरंत बाद,
shall the sun be darkened,
सूर्य अंधियारा हो जाएगा,
and the moon shall not give her light,
और चंद्रमा का प्रकाश
and
जाता
the stars
रहेगा,
shall fall from heaven,
और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे,
and the powers of heaven shall be shaken,
और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी।
Then finally we read in verse 30.
और फिर अंत में हम यहाँ पर वचन 30 में पढ़ते हैं।
Then shall appear the sign of the Son of Man in heaven.
तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा।
And then shall all the tribes of the earth mourn.
और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे इस तरह से कहता है।
And they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven.
और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे।
With power and great glory.
बड़ी सामर्थ्य और बड़े ऐश्वर्य के साथ आते देखेंगे।
Then the people throughout the world will see Jesus Christ come in glory and power.
और उस समय पूरे संसार के लोग जो है वो तो यीशु मसीह को महिमा और सामर्थ्य में आते हुए देखेंगे।
I want to just give you a reminder or a comparison. You could say we all know that Mount Everest is the tallest mountain in the world.
और मैं आपको इस बात के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। आप जरा तुलना करके देखिए, माउंट एवरेस्ट जो है वो तो संसार में सबसे ऊंचा पहाड़ है।
But can we see it from Hyderabad, that is South India?
लेकिन दक्षिण भारत का जो हैदराबाद शहर है क्या हम उससे वहाँ से देख सकते हैं?
No, we cannot see it.
नहीं, उसे नहीं देख सकते
हैं। But here Jesus says the whole world will see it.
लेकिन यहाँ पर यीशु कहता है कि पूरा संसार उसे देखेगा।
How is it possible?
ये सच में कैसे संभव है?
Today we can watch a cricket match played in Australia live on TV and internet.
आज हमारे इन दिनों में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाने वाला जो क्रिकेट मैच है उसे हम लाइव टीवी पर या फिर इंटरनेट पर देख सकते हैं।
We can also see live what happens in any part of the world.
और साथ साथ में संसार के किसी भी भाग में क्या हो रहा है उन सारी बातों को हम लाइव देख सकते हैं।
So also when Jesus Christ comes, all the TV cameras will focus on the incident.
और मैं सोचती हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो सारे टीवी कैमरा जो है वो इसी घटना के ऊपर फोकस करेंगे।
सुबवाता इज आल्सो इन्वॉल्वड।
आप जानते हैं उस समय शुभ संदेश भी उसमें जुड़ा होगा।
पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन सी इट साइमल्टेनियसली।
कि पूरे संसार के जो लोग हैं वो उसी समय में उसे देख सके।
इट विल बी यूनिवर्सली विजिबल एंड ऑडिबल।
और ये तो ऐसी घटना होगी जो पूरे संसार में देखी जाएगी, पूरे संसार में सुनी जाएगी।
जस्ट लुक व्हाट मैथ्यू राइट्स अबाउट।
अब देखिए इसके बारे में मत्ती क्या लिखता है।
मैथ्यू चैप्टर 24:31।
मत्ती अध्याय 24 वचन 31 में।
इट राइट्स अबाउट द ग्रेट साउंड ऑफ द ट्रम्पेट व्हिच कुड बी हर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द अर्थ टू द अदर।
वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे।
Revelation 1 says,
प्रकाशित वाक्य एक इस तरह से कहता है
that his coming will be seen universally.
कि उसका जो आगमन है, उसका जो आना है, वो पूरे संसार में देखा जाएगा।
The verse reads like this.
ये वचन इस तरह से कहता है,
Look, he's coming with the clouds.
देखो वो बादलों पर आता है,
And every eye will see him.
और हर आंख उसे देखेगी,
Even those who pierced him.
जिन्होंने उसे भेदा वो भी उसे देखेंगे,
And all the people on the earth.
और पृथ्वी पर के सारे लोग उसे देखेंगे,
They will mourn because of him.
और उसके कारण वो शोक करेंगे।
We are told in the scriptures that the second coming will be in power and glory.
हमें वचन में इस तरह से बताया गया है कि दूसरा जो आगमन है वो तो सामर्थ्य में होगा और महिमा में होगा, इस तरह से बताया गया है।
Humility stands out in the first coming of Jesus Christ.
यीशु मसीह के पहले आगमन में हम नम्रता को देखते हैं।
But the glory stands out in the second coming.
लेकिन दूसरे आगमन में हम उसकी महिमा को देखते
He will
हैं।
return with the sound of a trumpet.
वो तो तुरही की आवाज के साथ में लौट आएगा।
Marked with the powerful accompaniment.
और साथ साथ में वो अपने बहुत सी उपलब्धियों को करेगा।
Of angels and saints.
वो स्वर्गदूतों को भेजकर संतों को जमा करेगा।
Therefore, in Matthew 24:36 says,
और इसलिए मत्ती अध्याय 24 वचन 36 इस तरह से कहता है,
He comes in an unexpected time.
वो तो ऐसे समय में आएगा जिसके बारे में कोई अपेक्षा नहीं करता।
Let's read what the Bible says.
आइए देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है।
But of that day and hour knoweth no man, nor knoweth the angels of heaven, but my Father only.
उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के स्वर्गदूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता ही जानता है।
So I hope you understand the sequence of events, and when you read Matthew 24:25, you yourself will understand.
मैं अपेक्षा करती हूँ कि यहाँ पर आप इन क्रम को समझ रहे हैं, और जब मत्ती अध्याय 24 वचन 25 को आप पढ़ेंगे तो आप इन बातों को पूरी तरह से अच्छे से समझ पाएंगे।
Today we see in the great situation, people are selfish.
आज हम देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में देखिए लोगों को, लोग केवल स्वार्थी हो गए
हैं।
वो तो पैसों से प्रेम करते हैं और उनमें धार्मिकता की कमी है।
They are immoral.
और वो अनैतिक हो चुके हैं।
Hate the own people.
वो तो अपने ही लोगों से नफरत करते हैं।
Also we find bitter threats between countries taking place.
हम देखते हैं कि देशों के बीच में कड़वाहट है और एक देश दूसरे देश को धमकाता है। मत्ती अध्याय 24 में
Jesus Christ emphasizes the same point for the second time.
यीशु मसीह यहाँ पर दूसरी बार फिर से इसी मुद्दे के ऊपर में जोर देता है।
We read in Matthew 24, verse 44.
मत्ती अध्याय 24 वचन 44 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
Therefore, be ye also ready.
इसलिए तुम भी तैयार रहो।
For in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh.
क्योंकि जिस घड़ी के विषय तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मत्ती अध्याय 24 वचन 26 में यीशु हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी खबर देता है।
He says that no one knows the return of Jesus Christ except the Father in heaven.
वो कहता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कोई नहीं जानता, केवल स्वर्ग में पिता जानता है।
We do not know the exact time.
हम उसके बिल्कुल सही समय के बारे में नहीं जानते हैं।
But there is a hint given by Jesus Christ.
लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी है।
When we read in Matthew 24:14,
जब हम मत्ती अध्याय 24 वचन 14 में पढ़ते हैं,
Jesus tells us,
यीशु हमें यहाँ पर बताता है,
And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations.
और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो।
And then, of course, the end shall come.
तब अंत आ जाएगा।
After telling them about the number of signs to happen before his coming,
उसके आने के पहले कौन से चिन्ह होंगे, इन सारे चिन्हों को बताने के बाद में यीशु ये कहता है,
He reveals that this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness.
और वो बताता है कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो।
All the nations, then the end will come.
यानी सभी देशों में इसका प्रचार होगा और उसके बाद में अंत आ जाएगा।
The gospel is the good news of the coming of the Lord Jesus Christ.
सुसमाचार तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के बारे में शुभ संदेश है।
This message could not be preached around the world without the Bible.
और बाइबल के बिना ये जो संदेश है ये पूरे संसार में कहीं भी प्रचार नहीं किया जा सकता है।
However, it was only with the technological advances of television and radio and other means of mass communication after World War II.
और विश्व युद्ध दो के बाद में जिस तरह से टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट और मास कम्युनिकेशन के जो साधन बढ़ते चले गए हैं, हम देख सकते हैं कि इन सारी बातों की सहायता से ही
and the widespread acceptance that it became possible to reach hundreds of millions of human beings with the message of the Bible.
आज हम इस तरह से देखते हैं कि लाखों और करोड़ों लोगों तक बाइबल का ये संदेश, बाइबल का ये सुसमाचार लेकर जाना बहुत ही आसान हो गया है और ये तो सच में संभव हो चुका है।
Even so, during the last 50 years, it has not been possible to reach all the countries.
देखा जाए तो पिछले 50 साल में भी इतने सारे साधन के रहते हुए भी सभी देशों तक पहुंचना संभव नहीं हुआ है।
To print media, radio and TV.
प्रिंट मीडिया, रेडियो और टीवी के माध्यम से ये संभव नहीं हुआ
है। But the internet is changing everything.
लेकिन इंटरनेट सारी बातों को बदलते जा रहा है।
The gospel message of the coming kingdom of God is still going out to the world.
आने वाले परमेश्वर के जो राज्य का सुसमाचार है अभी भी पूरे संसार में कोने कोने तक पहुंचते चला जा रहा है।
It will finish when God the Father has decided that his work is completed and the time is right for the final end time events.
और ये तो निश्चय तब पूरा होगा जब पिता परमेश्वर ये सोचेगा कि अब सारा काम पूरा हो चुका है और ये बिल्कुल सही समय आ चुका है कि जो अंतिम घटना है वो हो जाए और सब कुछ पूरा हो जाए।
You cannot fathom in your mind what the internet is going to do.
आप अपने मन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेट इस समय क्या क्या करने वाला है।
It will play a very important role in the second coming of Jesus Christ.
और ये तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
Earlier it was not possible to carry the Bible in certain places.
पहले तो ऐसी बात थी कि कुछ देशों में हम अपने साथ में बाइबल भी लेकर नहीं जा सकते थे, ऐसी दशा थी।
But look at the magic of this today's world.
लेकिन आज के संसार के इस जादू को आप देखिए।
But today we can carry the Bible in our cell phones.
आज हम अपनी बाइबल को अपने सेलफोन में अपने साथ लेकर जा सकते हैं। हमारे सेलफोन में बाइबल है।
Isn't that wonderful?
क्या ये अद्भुत बात नहीं है?
Without being stopped.
बिना रुके हम इसे देख सकते हैं।
It plays a major role in commerce and information technology of the present days.
और आज के वर्तमान के दिनों में ये कॉमर्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
When Jesus told his disciples on Mount Olives about the world being preached everywhere.
जब यीशु ने अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पर इस तरह से बताया कि परमेश्वर का जो वचन है वो हर जगह पर प्रचार किया जाएगा
And all the earth would see is coming.
और सारी जो पृथ्वी है वो उसके आगमन को देख पाएगी।
They could not have understood.
वो इस बात को नहीं समझ पाए।
They wondered, how can these things happen?
वो बस यही सोचते रहे कि ये सारी बातें कैसी होगी।
Today it is the recent enhancement in the fields of satellite, internet and mobile phones.
और आज हम देखते हैं कि सैटेलाइट, मोबाइल फोन, इंटरनेट के माध्यम से ये सुसमाचार तो सच में कोने कोने तक पहुंच रहा है।
Having made everything what Jesus said possible.
और यीशु ने जो कुछ भी कहा उन सारी बातों को ये संभव बनाते जा रहा है।
What a great God we have.
हमारा परमेश्वर कितना महान है।
Are you reading your Bible?
क्या आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं?
Jesus is coming soon.
यीशु जल्दी आ रहा है।
We are going to be ready and prepared for the second coming of Jesus anytime.
हम किसी भी समय तैयार रहेंगे कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को देख सकें।
Are you ready?
क्या आप तैयार
हैं? May God bless each and every one.
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमेन।
היום שמאיר הללויה על מה שהיה